ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय टीकाकरण प्राधिकरण का कहना है कि कोविड-19 बूस्टर शॉट्स को अब 16 से अधिक उम्र के लिए पूरी तरह से टीकाकरण की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। ATAGI का यह निर्णय बृहस्पतिवार 10 फरवरी को राष्ट्रीय मंत्रिमंडल में सामने आया कि अब पूरी तरह से टीकाकरण को 3 खुराकों के रूप में परिभाषित करेगा, 2 टीकों का एक कोर्स और एक तीसरी बूस्टर खुराक। जबकि ये अभी केवल घरेलू स्तर पर ही इस सलाह को अनिवार्य बनाने की है, चिंताएं हैं कि कुछ राज्य विदेशी यात्रियों को शामिल करने के लिए इसका विस्तार कर सकते हैं। अब ये ऐसे समय पर आया है कि जब कई देशों में उनकी आबादी के 1/3 से भी कम लोगों को ट्रिपल टीका लगाया गया है। विक्टोरियन प्रीमियर डैनियल एंड्रूज ने सप्ताह में पहले संकेत दिया था कि अगर ATAGI ने अपनी सलाह बदल दी तो वो राज्य भर में स्थानों में प्रवेश के लिए तीसरी खुराक को अनिवार्य कर देगा। उन्होंने कहा कि वो पर्यटन ऑपरेटर्स के कॉल के बावजूद विक्टोरिया में अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए उस जनादेश का विस्तार कर सकते हैं। पर्यटन ऑपरेटर्स का कहना है कि इस वजह से यात्रियों के आने पर रोक लग सकती है और स्थानीय व्यवसाय भी प्रभावित हो सकते हैं।
I want everyone to get 3 doses and I'll do nothing that would make it less likely that people who live here get 3 doses. But let's try and have a consistent approach and we're not going to see Victoria disadvantaged.
Queensland Premier Anastasia Palaszczuk ने कहा था कि वो भी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए 3 खुराक का आदेश लागू कर सकती हैं, जबकि न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर डोमिनिक पेरेटे ने एक दृष्टिकोण का संकेत नहीं दिया है। लेकिन न्यू साउथ वेल्स में बूस्टर को प्रोत्साहित किया जा रहा है, खासकर राज्य के मूल निवासी समुदायों के बीच। राज्य के एबोरिजिनल अफेयर मिनिस्टर बेन फ्रैंकलिन का कहना है कि पश्चिमी सिडनी की बड़ी स्वदेशी आबादी को टीका पाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आज 12 फरवरी को NRL इंडिजिनस ऑल स्टार गेम्स में एक पॉपअप बूस्टर स्टैंड लगाया गया है।
Even though the Aboriginal take-up of vaccines has been very high and good, it is still lower than non-Aboriginal people. And so we're keen for as many Aboriginal people to take advantage of the boosters as they possibly can. That's why we're so excited that there's a booster hub, a pop-up hub, here from 4 till 8 on Saturday afternoon. It's free, it's walk-in.
राज्य ने अपने अस्पताल में आने के नियमों में भी बदलाव किए हैं, जिससे मृत्युशैया पर पड़े मरीजों के प्रियजन उनके पास रहने की इजाजत पाते हैं। न्यू साउथ वेल्स के सार्वजनिक अस्पतालों में मरीजों के लिए आने वाले परिवार मित्रों को 16 दिसंबर से महामारी के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये नए प्रोटोकॉल मरीजों के प्रियजन की संख्या बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए हैं और जीवन के अंत पर आ चुके रोगियों और उन जन्म देने वाली महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ब्रैड हैजार्ड का कहना है कि ऐसे नियमों के लिए देखभाल और करुणा हमेशा ही प्रमुख मार्गदर्शक होना चाहिए।
That care and compassion has to extend to the immediate patient who a visitor wants to see, but also care and compassion to the broader hospital community to keep them safe. So there's a balancing act here, but I'm satisfied that the new guidelines being issued today to the 400 health facilities and 170,000 health staff across the state are as good as they can be for this moment.
क्वींसलैंड में राज्य के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी जॉन गैराट का मानना है कि महीने के अंत तक आधी आबादी वायरस से संक्रमित हो सकती है। उनका कहना है कि गोल्ड कोस्ट पर घर घर जाकर यादृच्छिक रूप से यानी रैंडम रूप से नागरिकों का परीक्षण करने पर एक अध्ययन में पाया गया कि सकारात्मक परीक्षण करने वाले केवल 10-20% लोग ही वास्तव में जानते थे कि उन्हें कोविड था।
So the number could be as much as 5-10 times what we're actually reporting. So I think it's our original modeling suggested that up to 50% of the Queensland population could be infected with this virus by the end of February, and I think that's very credible.
वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में प्रीमियर मार्क मैक्योवन ने सीमाबंद होने से प्रभावित उद्योगों को लक्षित करते हुए $77 मिलियन के नए समर्थन पैकेज की घोषणा की है। श्री मैक्योवन कहते हैं कि हालांकि सीमा खोलने में देरी के अपने फैसले पर वो कायम हैं, लेकिन उन उद्योगों का समर्थन करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं जो यात्रा पर ही बहुत अधिक निर्भर है।
It's a shot in the arm for businesses and organisations in international education, tourism, aviation and the events sectors, some of whom are doing it tough. 9 targeted programs, which are designed to support cash flow and help offset some of the additional costs or lost revenues in these sectors.
उधर दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में बाहरी आतिथ्य, फिटनेस उद्योग और घरेलू समारोहों में कुछ COVID-19 प्रतिबंधों को कम करने की बात है। अपनी भाषा में वर्तमान में COVID-19 महामारी के जवाब में स्वास्थ्य और सहायता उपायों के लिए sbs.com.au/coronavirus पर जाएं। ब्रुक यंग की इस रिपोर्ट को SBS हिंदी के लिए प्रस्तुत किया अनीता बरार ने।